नमस्कार भारत, तारीख 31 जुलाई दिन शुक्रवार, मैं हूं विनीत खरे। दशकों के इंतजार के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच इलाकों के लेन देन शुरू, स्थानीय लोगों में उत्साह।
ऐसा खुश है, मुझे तो लग रहा है इस खुशी की वजह से कोई मर ना जाए। महसूस हो रहा है ये बुड्ढा लोग खुशी की वजह से मर ना जाए।
दोनों देशों के लिए जमीन सीमा समझौते के कार्यान्वयन के क्या मायने हैं, सुनिएगा कार्यक्रम में। स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर सुनिएगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बीबीसी हिंदी की खास बातचीत।
जीएसटी को हम सपोर्ट कर दिया स्टेट रिहैबिलिटेशन करने का बाद। लैंड एक्विजिशन, हम फोर्सफुल लैंड एक्विजिशन के खिलाफ में है, आज भी है कल भी रहेगा।
बदायूं में दो बहनों के शव पेड़ से लटके मिलने के एक साल बाद वापस चलेंगे उसी इलाके में, जानने की क्या महिलाओं के जीवन में सुधार आया है। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत की आजादी और विभाजन के 69 वर्ष बाद भारत बांग्लादेश सीमांत क्षेत्रों में आज हजारों बाशिंदे पहली बार आजादी का जश्न मना रहे हैं। उन्हें 69 वर्ष बाद राष्ट्रीयता और नागरिकता मिल रही है। विभाजन के बाद भारत के कुछ हिस्से बांग्लादेश के हो गए थे और बांग्लादेश के कुछ इलाके भारत के हिस्से में आए थे। भारत बांग्लादेश एनक्लेव कहे जाने वाले इन इलाकों में रहने वाले अभी तक व्यावहारिक रूप से किसी देश के नागरिक नहीं थे, लेकिन हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते के बाद इन इलाकों की अदला बदली की जा रही है और इन्हें भारत और बांग्लादेश में शामिल किया जा रहा है। अफगान तालिबान ने अपने दिवंगत नेता मुल्ला उमर की मौत की पुष्टि कर दी है और उनका उत्तराधिकारी नेता चुन लिया है। मुल्ला अख्तर मंसूर तालिबान के नए नेता होंगे। वे तालिबान में दूसरे नंबर के नेता और अफगान सरकार में मंत्री रहे हैं। बीबीसी के अफगानिस्तान संवाददाता का कहना है कि नए नेता का चयन तालिबान को बांटने वाला साबित हो सकता है। तालिबान के कुछ नेता मुल्ला अख्तर मंसूर का सख्त विरोध करते रहे हैं क्योंकि उन्हें शांतिवार्ता का समर्थक और पाकिस्तान का करीबी माना जाता है। दूसरी ओर अफगान सरकार ने आज से होने वाली दूसरे दौर की शांतिवार्ता को अचानक टाले जाने पर निराशा व्यक्त की है। इजरायली पुलिस ने यरूशलम में सालाना होने वाली समलैंगिक अधिकार परेड पर हमला करने वाले एक कट्टरपंथी यहूदी को गिरफ्तार कर लिया है। परेड पर चाकू से किए गए हमले में कम से कम 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि हमलावर वही कट्टरपंथी यहूदी व्यक्ति है जिसने साल 2005 में समलैंगिक अधिकार परेड पर हमला कर 4 लोगों को घायल कर दिया था। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने हमले की आलोचना की है। उन्होंने कहा, यरूशलम में आज शाम एक घिनौना अपराध अंजाम दिया गया। इसराइल में सभी समुदाय जिनमें समलैंगिक भी शामिल हैं को शांति से रहने का अधिकार प्राप्त है और हम इस अधिकार की रक्षा करते रहेंगे। मैं इसराइल के धार्मिक नेताओं के से इस कृत्य की आलोचना करने का स्वागत करता हूं और इसराइल के सभी नागरिकों की ओर से घायलों की सेहत में तेज सुधार की कामना करता हूँ। ये थे इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने ओरेगन के पोर्टलैंड में एक पुल से लटक रहे 13 पर्यावरण प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। ग्रीन पीस के कार्यकर्ता पिछले 2 दिनों से सेंट जॉन पुल से लटक रहे हैं। कोस्ट गार्ड प्रदर्शनकारियों को पुल से करीब 60 मीटर नीचे नदी में इंतजार कर रही नावों पर उतारने की कोशिश कर रही है। उनके विरोध के कारण रॉयल डच शेल का बर्फ तोड़ने वाला जहाज आर्कटिक में खुदाई के लिए नहीं जा सका था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में नमस्कार भारत, आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं, मैं हूं विनीत खरे। करीब 4 दशक के लंबे इंतजार के बाद भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के इलाकों में बसे 162 इलाके या एनक्लेव एक दूसरे को सौंपना शुरू कर देंगी। ये कार्रवाई दोनों देशों के बीच जमीन सीमा समझौते के कार्यान्वयन के आधार पर हो रही है। इलाके में रहने वाले करीब 50,000 लोग इस बारे में फैसला ले चुके हैं कि वो भारत की नागरिकता लेना चाहेंगी या पाकिस्तान या बांग्लादेश की। दरअसल विभाजन के वक्त भारत के कुछ हिस्से बांग्लादेश की मिल्कियत में चले गए थे और बांग्लादेश के भीतर के कुछ इलाके भारत में आ गए थे। भारत बांग्ला एनक्लेव के नाम से जाने वाले इन एनक्लेव के निवासी अभी भी किसी देश के शहरी नहीं है, लेकिन आज इलाके में जश्न का माहौल है। पश्चिम बंगाल के मलाश डांगा एनक्लेव से शकील अख्तर की रिपोर्ट।
मशाल डांगा एनक्लेव में आजादी के जश्न की तैयारियां कई रोज से चल रही थीं। एनक्लेव के हजारों निवासियों को आजादी के 69 वर्ष बाद राष्ट्रीयता और नागरिकता मिलने वाली है।
जैसे 15 अगस्त को 47 साल में इंडिया को आज़ाद मिला था, जैसे इंडिया का आदमी खुश हुआ था, ऐसे आज ये पूरे इनक्लेव का आदमी इतना ही खुश महसूस कर रहा है कि ये 69 साल के बाद हमारा दोबारा आज़ादी मिल रहा है।
आज जो हमें आज़ादी मिल रहा है, ऐसा खुशी जो हमारा जिंदगी में आ रहा है, ऐसा खुशी हमें ये उम्मीद नहीं था।
पुअतरकुठी इनक्लेव के 75 वर्षीय मोहम्मद मंसूर अली मियां ने अपना पूरा जीवन यहाँ के निवासियों के लिए नागरिकता हासिल करने के संघर्ष में व्यतीत किया है।
31 जुलाई रात्रि 12:00 पर रात्रि हमारा मन जी हमारा तो स्वाधीनता देख लें भुगते पड़म ना आगामी प्रयोजन।
मंसूर अली कह रहे थे कि हम अभी तक पशुओं की तरह जीते आ रहे थे, अब हम इंसानों की तरह जी सकेंगे, अब हमारे बच्चे स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक होंगे। भारत बांग्लादेश का विभाजन कुछ क्षेत्रों में बहुत जटिल रहा है। बांग्लादेश में सरहद के निकट बहुत से छोटे छोटे इलाके भारत की प्रभुसत्ता में थे, इसी तरह भारतीय सीमा के अंदर बहुत से इलाके बांग्लादेश की मिल्कियत में थे, उन्हें एनक्लेव के नाम से जाना जाता है। इन एनक्लेव के निवासियों को राष्ट्रीयता और नागरिकता प्राप्त नहीं थी। दोनों देशों ने हाल में एक समझौते के बाद एनक्लेव के निवासियों को नागरिकता प्रदान की है। मशाल डांगा के नासिर अली कहते हैं,
कौमियत और शहरियत से हमें ये तब्दीली मिल रही है कि हम इससे पहले बहुत सारे मुश्किलात में थे, जैसे कि पानी बिजली वगैरह और आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह हमें नहीं थे, और दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठाते थे और हम इससे महरूम थे, तो हमें ये सब मिल रहे तो हमें उससे भी ज़्यादा खुशी मिलेगी।
एनक्लेव के बाशिंदे आज़ादी के बाद से स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और सभी मानवीय सुविधाओं से वंचित थे। पुअतरकुठी एनक्लेव के निवासी नूर जमाल शेख का कहना है,
हमें नौकरी भी मिल जाएगा, रास्ता भी मिल जाएगा, बिजली भी मिल जाएगा, और जैसे हम बेकार था पहले, ऐसे था जो हम इनक्लेव है, दोबारा एडमिशन के लिए गया था और मास्टर ने हमें एडमिशन नहीं किया, और आगे ऐसा नहीं होगा।
1 अगस्त से एनक्लेव हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ के निवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता और पहचान मिल जाएगी। मोहम्मद कमाल को विश्वास है कि इससे यहाँ का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा।
भारत के आदमी जैसे घूमता है ऐसे घूम पाएंगे, खुला आज़ादी से घूम सकेंगे, दिल्ली जा पाएंगे, दिल्ली से चोरी छुप के हम आए, दिल्ली गए थे पहले काम करने के लिए, उधर से भी खुले हम घूम पाएंगे, आईडी ग्रुप रहेगा साथ, पैन कार्ड रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, सब लेके घूम पाएंगे।
मशालडांगा इनक्लेव में एक बड़ा सा पंडाल बनाया गया है, यहाँ जश्न की तैयारियाँ हो रही हैं। आधी रात से इनक्लेव सदैव के लिए ख़त्म हो जाएंगे। राष्ट्रीयता और नागरिकता मिलने के बाद यहाँ के हज़ारों बाशिंदे भारत के दूसरे नागरिकों की तरह एक आज़ाद देश के आज़ाद शहरी होंगे। शकील अख्तर, BBC, मशालडांगा इनक्लेव, पश्चिम बंगाल।
ये थी शकील अख्तर की रिपोर्ट, और शकील अख्तर ने स्थानीय लोगों से एक बातचीत भी रिकॉर्ड की है, आइए सुनते हैं।
जिंदगी मुझे ऐसा लग रहा है यही जिंदगी का पहला खुशी और यही आखिरी खुशी।
काफ़ी यहाँ परेशानी रही है, बहुत दुख का वक्त गुजरा है, यहाँ पे तकरीबन गुलामी जैसी ज़िंदगी थी कि आप ना निकल सकते थे ना कुछ, तो फिर अब जो है क्या बदलता हुआ महसूस हो रहा है, क्या बदलेगा?
जैसे जी पहले तो हमें कुछ नहीं मिलता था, सरकार गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता था, वही वाली बात, जैसे पिंजरे में अगर शेर भी रहते उनकी भी देखभाल गवर्नमेंट करते हैं, लेकिन हम लोगों का नहीं करा, क्योंकि हमें ना तो रेशन मिलता है, ना वोटर कार्ड था, ना कुछ था। जब हम इंडिया में हो जाएंगे तो ये तो उम्मीद है हम रेशन मिलेंगे, जैसे इंडिया में मिलता है और कुछ हम इंडिया में मिल जाएगा, ऐसा भी हम गरीब है ऐसे मिल जाएगा सब कुछ।
यहाँ के सारे लोगों ने भारत चुना है, जबकि आपसे पूछा गया था कि आप भारत में जाना चाहते हैं या बांग्लादेश में, तो यहाँ के सब लोगों ने भारत चुना, उसकी क्या वजह है?
वजह ये है, इनकी जन्मभूमि है, ये जन्मभूमि छोड़ के ये
जाना है जी,
जाना
वजह अच्छा। ये है जी, 70 साल से हम बांग्लादेश में ही है, और दोबारा हम बांग्लादेश नहीं जाना चाहते हैं कोई भी आदमी।
और एक बात तो है, जब ये बांग्लादेश है, हम बांग्लादेश में रह रहा है सब बस, लेकिन बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट है वो तो हमारा देखभाल नहीं कर रहा, लोगों का कहना है, कह रहे ये बांग्लादेश की ज़मीन है, जब हम बाजार जाएंगे कुछ खरीदने के लिए वो भी इंडिया में जाना पड़ेगा, तो हम इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारा जन्मभूमि इंडिया है, हम इंडिया में रह रहे बहुत दिन, जब हम इंडिया में रहेंगे।
तो अब जो है आप इंडिया का हिस्सा बन गए हैं, तो इससे आपको सबसे पहले क्या फ़ायदा महसूस हो रहा है, कि क्या फ़र्क होगा आपकी ज़िंदगी में, रोज़ाना की ज़िंदगी में?
रोज़ाना की ज़िंदगी में जैसे हमें आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, रेशन कार्ड मिलेगा, तो हम इंडिया का भुक्त हो जाएंगे यहाँ से।
सबसे दुख की बात तो ये है जी, जब हम यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ मान के चलो हम इंडिया में जा रहे हैं, पास के गांव जा रहे हैं, वहाँ हमें पकड़ लिया, यहाँ हमें 3 महीना जेल में रहना पड़ता है। बस वहाँ जब ट्रांसफर कर देता है, कह रहा बांग्लादेश के बांग्लादेश, बांग्लादेश वाला वहाँ जब 3 महीना हो जाता है, ये कह रहा है ये बांग्लादेश की नहीं है, फिर दोबारा हमें यहाँ भेज देता है। इसी तरह करते करते किसी का 5 साल हो गया जेल।
ऐसा था जो हमारे पास जो आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं था, ऐसा मुसीबत जो हमारा ये जो बामन हेड ना, ये जो हमारा आसपास में मार्केट है, यहाँ अगर जाएंगे तो वहाँ के लोग भी कहता है इनका कोई ईमेल नहीं है, ये तो बांग्लादेश का है, ये हमें क्या कर लेगा। ऐसा है 2 थप्पड़ कान पे देता और 40 रुपये निकाल लेता एक पाउए के लिए, ये आप नहीं रहेगा, हम आज़ादी से घूम सकेंगे, हमें सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा खुश है, मुझे तो लग रहा है इस खुशी की वजह से कोई मर ना जाए, महसूस हो रहा है जी ये बुढ़ा लोग खुशी की वजह से मर ना जाए, ऐसा खुशी महसूस हो रहा है।
सबसे बड़ी बात तो यह है जय नरेंद्र मोदी ने ये काम हमारा कर दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया, हम उनको बहुत बधाई देते हैं सीट की तरफ से।
एनक्लेव में रहते कुछ लोग, उनसे बात की थी शकील अख्तर ने, और शकील अख्तर जैसा कि बता रहे थे कि ये कुछ वक्त में ही एनक्लेव ख़त्म हो जाएंगे। बांग्लादेश में इसे लेकर क्या मूड है बता रही हैं ढाका से बीबीसी संवाददाता फरहाना परवीन।
यहाँ पर लोग जो बांग्लादेश की तरफ से, वो लोग बहुत ही खुश है। यहाँ के जो रहने वाला आदमी है वो स्टेज सजा रहा है, गाना बजाना होगा, नाटक होगा, यहाँ पर बांग्लादेश की झंडा लहराया जाएगा, पूरे दिन खुश रहेगा, उसी के लिए ही सब इंतजाम कर रहा है। जो आदमी इंडिया में जाएगा वो भी खुश है, लेकिन यहाँ पर जन्म हुआ है फिर भी जाना चाहता है, इसीलिए उनके मन थोड़ा खराब है, मगर फिर भी वो भी खुश है। बेसिकली यहाँ पर खुशी का माहौल है। ऑफिशियली कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, लेकिन अपनी पॉकेट से लोग खुशी के लिए ये सब अरेंजमेंट कर रहा है, स्टेज सजा रहा है, सब कुछ कर रहा है लोग अपनी तरफ से। 2 दिन तक एक खुशी मनाया जाएगा। यहाँ पर लोग बहुत दिन से इस वक्त के लिए कर रहा है, आज वो दिन आया है। इतने दिन से ये लोग किसी भी देश की नागरिक नहीं था, अब हो रहा है। नेचुरली अपने दिल से बहुत ही खुश है ये लोग।
भारत और बांग्लादेश के बीच एनक्लेव्स की लेन देन पर ये थी ढाका से बीबीसी संवाददाता फरहाना परवीन। एनक्लेव्स की इस अदला बदली की क्या अहमियत है, पूर्वोत्तर में भारत में कौन, पूर्वोत्तर भारत के कौन से राज्य इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथी संदीप सोनी ने कोलकाता में वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक से संपर्क किया और उनसे पूछा कि जिन एनक्लेव्स की अदला बदली होने जा रही है उनमें रहने वाले लोग हैं उन्हें भारतीय नागरिक माना जाता है ना बांग्लादेश का नागरिक माना जाता है, आखिर इसकी क्या वजह थी?
इसका वजह ये था कि जो एनक्लेव भारत का है और उसके चारों तरफ बांग्लादेश है, तो वहाँ ये लोग बांग्लादेश के अंदर भारत के जमीन पे बस रहे थे, जहाँ की भारत के साथ इनका कोई ताल्लुकात ही नहीं था। अब वो बांग्लादेशी भी नहीं थे क्योंकि वो टेक्निकली जो है भारत के जमीन पर बस रहे हैं, बट वो भारतीय भी नहीं थे क्योंकि भारत के साथ उनका कोई ताल्लुकात नहीं। यही हाल उन लोगों का जो बांग्लादेश के एनक्लेव जो भारत के अंदर थे वहां बसते थे, न ही वो बांग्लादेशी, क्योंकि वो इलाका जरूर बांग्लादेश का माना जाता था पर उसके साथ बांग्लादेश का कोई ताल्लुकात नहीं था, वो भारत के अंदर था। तो ये कुछ हद तक ऐसा हालत है कि अगर आपके घर के अंदर मेरा घर का एक हिस्सा घुस जाता है तो वहाँ जो रहेगा वो ना आपका रहेगा ना हमारा रहेगा, ऐसा हालत है।
इसकी वजह क्या थी?
इसका वजह ये था कि पाकिस्तान और भारत पार्टीशन के बाद इस प्रॉब्लम को उन्होंने टैकल नहीं किया। बांग्लादेश आजाद होने के तुरंत इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इंदिरा मुजीब एग्रीमेंट तो हुआ, बट उसको लागू करने के लिए जो फॉलो अप एग्रीमेंट का जरूरत था उसमें एक रुकावट आया, वो भारत के वजह से उसको इम्प्लीमेंट करना नामुमकिन हो गया। बहुत सालों के बाद मनमोहन सिंह ने जब इनिशिएटिव लिया तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट तो हो गया, बट वो भारत के पार्लियामेंट में फंसा रहा क्योंकि उस वक्त बीजेपी ने हल्ला किया। अब बीजेपी जो है सत्ता में है तो इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अजीबोगरीब हालत था इन लोगों के लिए कि ये लोग जिसे हम कह सकते हैं कि नोबडीज पीपल इन ए नो मैंस लैंड, ये न इधर के न उधर के, कि हम हैं बांग्लादेश के जमीन पर बट हम हिंदुस्तान के घिरे हुए हैं चारों तरफ से, तो हम हिंदुस्तानी हैं या बांग्लादेशी हैं, ये अब जाहिर है कि न हिंदुस्तान का सिटीजनशिप हमको मिल रहा है न बांग्लादेश का मिल रहा है, तो फंसे हुए थे ये लोग, करीब 50-60 हजार लोग हैं ऐसे।
इन एनक्लेव्स की जो अदला बदली होने जा रही है उससे
पूर्वोत्तर भारत के कौन कौन से राज्यों पर असर पड़ेगा?
ये वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, ये चार जो स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं, इन पर असर पड़ेगा। ज्यादातर इसका असर जो है पश्चिमी बंगाल, उसके कूचबिहार जिले में और थोड़ा बहुत असम के जो इलाका है वहाँ ज्यादातर इस तरह के एनक्लेव्स हैं। त्रिपुरा और लोअर असम में उतना ज्यादा कुछ नहीं है, मेघालय में भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा ये पश्चिम बंगाल और असम में।
कोलकाता से ये थे वरिष्ठ पत्रकार शुभीर भौमिक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीबीसी हिंदी को दिए एक विशेष साक्षात्कार में दावा किया है कि उनकी पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता है और उनकी पार्टी राज्य से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ममता बनर्जी से बात की हमारे साथी शुभज्योति घोष ने।
बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा का जो परंपरा थे लेफ्ट रूल से, उसके पहले
अभी
भी थे,
अभी कुछ नहीं,
अभी
है।
तो हम सुनते हैं कुछ और कुछ में
नहीं नहीं झूठा है अभी, नो नो दैट इज नहीं नहीं है। पहले बंगाल नंबर वन में थे राजनीतिक हिंसा में, अभी कुछ नहीं है। पहले आप देखो, अगर आप इंडस्ट्री में भी पूछो कि आपको पता है ये लोग हर रोज स्ट्राइक ब्लॉकेट ऐसा करते थे धर्मघट, इसका नाम पे हमारा 78 लाख मैंडेज लॉस्ट हुआ करते थे, अभी हमारा इधर में जीरो हो गया।
लेकिन हिंसा भी, हिंसा भी कम हुआ,
हिंसा कुछ नहीं है। देखो 341 रूरल ब्लॉक है और सारे हमारा म्यूनिसिपैलिटी भी है, इसमें 3-4 ब्लॉक में, अगर ये तो डेमोक्रेसी है भाई, इसमें 3-4 ब्लॉक में कोई क्लब का भी कोई झगड़ा होता है तो बोल देता है इसको पॉलिटिकल नहीं है, इसमें कोई आदत हो गया है लेफ्टिस्ट का। और बीजेपी तो अभी कोई काम नहीं है, इसको कम्युनल बनाना हॉर पाथ पे इसको एक ही काम है, तो यही है और कुछ नहीं है।
बीजेपी अभी सत्ता में है सेंटर में, तो आप और आपकी पार्टी किन किन मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है? मतलब
नहीं,
आपका क्या रुख है?
एक पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी होता है, उसका मैनिफेस्टो। हम पॉलिटिक्स में जब 5 साल के लिए आते हैं, हमारा मैनिफेस्टो में कह देते हैं कि आप इसके लिए सपोर्ट करेगा, हम इसके लिए नहीं करेगा, दिस आर द इश्यूज। हमारा जो इश्यूज है जीएसटी को हम सपोर्ट करेगा, हम बोला था इसके लिए जीएसटी को हम सपोर्ट कर दिया स्टेट रिहैबिलिटेशन करने का बाद। लैंड एक्विजिशन, हम फोर्सफुल लैंड एक्विजिशन के खिलाफ में है, आज भी है कल भी रहेगा। हम लोग FDI रिटेल मार्केट के लिए हम खिलाफ में थे, हम हैं अभी भी। हम जो जो बात कहा था ना, वी डोंट वांट टू चेंज आवर स्टैंड। कम्युनल इशू पे कभी नहीं, हम कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे इश्यू है जिसमें आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज।
और एक सवाल आपकी पार्टी के लिए, तृणमूल कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य संभालने के लिए क्या लगता है आपको? भतीजा अभिषेक बनर्जी, ही इज ऑन स्पॉटलाइट फॉर कपल ऑफ डेज, वो तैयार हो गया कि आपको क्या?
लेकिन आप लोगों को
ये
सब क्वेश्चन मेरे को पूछना नहीं चाहिए था। दिस अ वेरी प्रेटी क्वेश्चन, आई एम टेलिंग, आई एम सॉरी। देखिए हमारा पार्टी इट्स अ जॉइंट फैमिली, हमारा बहुत सारे अभिषेक जैसा है एक MP है, हमारा ऐसा आरोप 45 MP है, सो इज वन ऑफ देम आउट ऑफ दैट। लेट देम प्रिपेयर, लेट देम वर्क फॉर द पीपल। हम चाहते हैं जो भी है, वो तो हमारा तो एक ही आदमी है और फैमिली से तो पूरा आते हैं, और इसको हम भी नहीं लाया है, वो छोटा सा पॉलिटिक्स करते हैं। उसको जब मेरे को दे वांट टू किल मी, जब आप छोटा थे मेरे को, जब स्टूडेंट मूवमेंट
था
हमको जब मारने के लिए ये लोग, जब मेरे को आई वॉज अबाउट टू डाई, जब मृत्यु से हम घूम के आया, तो वो टाइम में वो छोटा था, 2-3 साल का था, वो टाइम से उसको एक देख के मेरे को खून देख के उसको एक तैयार हो गया था कि हम राजनीति करेगा, हम इसको कभी टॉलरेट नहीं करेगा, छोटा से एक तैयार हो गया था। ऐसे हमारा लाखों करीब, हमारा 1 करोड़ हमारा वर्कर है, तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ देम।
नेशनल पॉलिटिक्स में आपका रोल क्या होगा अगले कुछ सालों में? बंगाल में आप कन्फाइंड थे पिछले कई कुछ सालों में, लेकिन क्या आपको हम नेशनल पॉलिटिक्स में भी देखेंगे सामने वाले आने वाले दिनों में?
देखिए मैं 23 साल पार्लियामेंट में थे, नेशनल पॉलिटिक्स मेरे को पता है। अरे तो इधर में बैठे हैं तो पार्लियामेंट में क्या होता है, तो हर तरह बात चलती है, पार्लियामेंट्री पार्टी है हमारा, 45 MPs है, तो एवरी टाइम वी आर ऑन द रोड मैप, नो प्रॉब्लम। सो देखिए मैं तो एक जस्ट स्मॉल पर्सन, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू एज ए कॉमनर, मेरे को इतना ज़्यादा ये भी नहीं है, अगर कभी ज़रूरत होगा तो आई कैन गिव देम ऑल हेल्प, हमारा क्या है, हम तो ठीक है।
बंगाल में कन्फाइंड रहेंगे या दिल्ली भी जाएंगे कभी?
देखिए ये तो आप कल कहाँ रहेगा वो आप तो नहीं बता सकते हैं।
ममता बनर्जी से बात की थी हमारे साथी शुभज्योति घोष ने। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में करीब 1 साल पहले 2 बहनों के शव एक पेड़ से लटके पाए गए थे। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे सामूहिक बलात्कार का मामला बताया था। भारत में उस वक्त बर्बर बलात्कार की कई वारदातें सामने आई थी और इस घटना की विदेशों में भी निंदा हुई थी। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने पिछले साल बदायूं से इस घटना पर जानकारी दी थी। अब दोबारा बदायूं के कटरा शहादतगंज गांव जाकर उन्होंने जानने की कोशिश की कि क्या वहां महिलाओं की जिंदगी पहले की तुलना में सुरक्षित हुई है।
यही जगह है जहां मेरे बच्चे, इस जगह पर घटना दिखाई गई मेरे बच्चों का। यहाँ बच्चों का दर्द मुझे सहन नहीं होता, इस वजह से जब आते हैं तो यहाँ हाथ जोड़ते हैं इस पेड़ से।
मैं फिर उनसे मिल रही हूँ, उसी पेड़ के नीचे जहाँ उनकी बेटी और उसकी बहन के शरीर झूलते मिले थे। यहीं वो मुझे तब भी मिले थे एक साल पहले, पर आज कुछ अलग है। उनके साथ 3 पुलिस कांस्टेबल हैं।
आपको क्यों इस वक्त पुलिस की ज़रूरत है, किस चीज़ से डर है आपको?
यही डर है कि कोई अगर कहीं पर, पहले मुझसे धमकियाँ आई थी कि केस को अपने शांति कर लो, कोई कह चुका रहा था, कोई कह रहा था CBI को निमट लें ताकि बाद में फिर देखेंगे इनको, तभी डर बन गया मुझे।
ये लड़कों की तरफ से आई थी, किस उनके परिवार की तरफ से आई थी?
उनके पर लड़कों के परिवार के नहीं, उनके बिरादरी के जैसे लोग थे।
शुरुआती जांच में डॉक्टरों ने पाया कि इनकी 14 साल की बेटी और उसकी 16 साल की बहन के साथ सामूहिक बलात्कार कर हत्या की गई है। पर अभियुक्त लड़के, जो लड़कियों से ऊंची जाति के हैं, बरी हो गए, क्योंकि पुलिस जांच को जब CBI के हवाले किया गया तो उन्होंने पाया कि लड़कियों ने आत्महत्या की है। CBI जांच से नाराज माँ बाप ने इसे खारिज करवाने के लिए अदालत में अपील की है।
ये आत्महत्या तो नहीं की है, ये तो सब झूठ बचा रहे हैं, ये तो भगवान उनका न्याय करेगा उनके साथ, इसका तो उनको भी कुदरत दंड देगी। न्याय नहीं दिला सके तो उसका क्यों ऐसा अत्याचार कर रहे हैं।
मैं अब लड़कियों के पिता के साथ उनके घर की तरफ चल रही हूँ।
जो वे गुंडा लोग आए, जो बिटिया संग में हरकत करी, तो मुझको छोड़ देंगे वे।
क्यों वो आपकी आपकी जाति की महिलाओं के लिए खतरा है?
शराब पीते हैं, गाली देते हैं, गुंडे ही दिखाते हैं, लड़कियों को रत्ते पहले छेड़ते हैं, ये करते हैं। फर्क तो जब परे, हमें जब हम न्याय पर ठाने तो हमें न्याय मिल गया, हमें तो तब जाना, हमें फर्क मिलेगा। शौचालय तो बन गया और हमको क्या मदद आएगी?
घर के बाहर है लेकिन एकदम अलग से चबूतरे पे बना हुआ है एक नया टॉयलेट, हरे रंग से पेंटेड है, ऊपर गुलाबी रंग है, एल्युमिनियम का दरवाज़ा है, बाकी घरों में लकड़ी के दरवाजे हैं। ये शायद सबसे बड़ा बदलाव है पिछले एक साल में जो इस गांव में आया है, जहां महिलाओं के पास कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। और उसी वजह से उस रात भी वो दोनों बहनें मैदान में गई थी, खुले में गई थी शौच करने के लिए।
गाँव वालों के मुताबिक लड़कियों के साथ हुई वारदात के बाद ही उनके गाँव में शौचालय बनाने का काम किया गया, पर जांच के नतीजे बदले तो ये काम बीच में ही छोड़ दिया गया। लड़कियों के परिवार के अलावा गांव के करीब 1/4 घरों में ही शौचालय बन पाया। 16 साल की लक्ष्मी उन खुशकिस्मत लोगों में से एक है।
हमारे घर में टॉयलेट बनने से बहुत फायदा हुआ है। पहले हम खेतों में टॉयलेट के समय बैठते थे तो लड़के जो छेड़छाड़, जो दबंग लोग हैं, छेड़छाड़ करते थे तो हम लाइटनिंग करते समय वो टॉर्च दिखाते थे। लाइटनिंग करने जाते तो कुछ साइकिल से आते, कहीं साइकिल की घंटी बजाते, कहीं टॉर्च दिखाते हैं, और आते हैं तो जबरदस्ती छेड़छाड़ भी करते हैं कि हाथ पकड़ लेते, कि शरीर पर हाथ भी चला सकते थे वो।
ये जो बहनों के साथ हुआ उसके बाद जब सब लोगों की नज़र यहाँ पड़ी, पुलिस, मीडिया, सब लोगों की, तो अब जो लड़कियाँ हैं तुम्हारी उम्र की, क्या वो सुरक्षित महसूस करती हैं? कुछ फ़र्क पड़ा है एक साल में?
ये हो गया है, आँखों से देखी बात है, अगर दूर होती तो इतना नहीं लगता, कि अपने पड़ोस की बात हो गई है, कि अपने पड़ोस की, अपने घर की ही बात हो गई है, इसलिए बहुत डर लगता है लोगों से। इतना डर किसी ने लगे तो यादव लोगों से ये लगता है डर, इतना डर लगता है कि हम खेतों में नहीं जा, हम बहनों के लिए इतनी सुविधा हो जाए घर से अपने कोई काम से हों।
सतह पर शांत लगने वाले गाँव में कुरेदो तो डर की जड़ें गहरी मिलती हैं, कम से कम महिलाओं के दिल में तो खौफ है। 3 बच्चों की माँ बाला बताती हैं कि हादसे के बाद कई बार गांव छोड़कर चले जाने का मन बनाया, पर पैसे की तंगी के चलते रुक जाना पड़ा।
अब इतना घटना हो गया तो डर नहीं लगेगा कि आप जा लगते घर से बाहर भाग जाए?
तब लगा था आपके?
आप भी लगता कि जा लगते बाहर निकल जाए?
नहीं, पर पुलिस तो यहाँ पे सारा टाइम है, फिर क्यों डर है?
पुलिस भी 12 मास थोड़ा साथ है तो डरा ही है, सारा घर के बाहर निकलता है, खेती में काम करे हो बाहर निकल तो सारे साथ ही थोड़ा ना रहे, सारे लोगों के साथ थोड़ा ना रहे।
इन्हीं शिकायतों के साथ मैं चल पड़ी बदायूं शहर की ओर, इलाके के SSP सौमित्र यादव से मिलने। एक साल पहले जब लड़कियों का मामला सामने आया था तो दो पुलिसकर्मियों पर अभियुक्त लड़कों की मदद करने का आरोप लगा था, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया।
ऐसी कोई कास्ट बेसिस पर डिपार्टमेंट के अंदर कोई फीलिंग नहीं है और डिपार्टमेंट के सभी लोग एक यूनिफॉर्म पुलिस फोर्स के पर्सनल की तरह काम करते हैं, इसमें कोई कास्ट का बहुत ज़्यादा रूल नहीं है।
पर वहाँ पर लोग अभी भी कहते हैं कि उनके मन में खौफ है ऊंची जाति के लोगों के खिलाफ और डर भी है कि पुलिस उनकी कितनी मदद करेगी।
ये उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप का परसेप्शन हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की कोई कास्ट बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन की, कोई दबंगियत की कोई शिकायत नहीं है और जहाँ भी कोई शिकायत कभी भी आती है तत्काल कार्रवाई की जाती है।
पर गांव वालों से पूछें तो ये आश्वासन नाकाफी है। लड़कियों के भाई के मुताबिक गांव की सच्चाई अलग होती है, जहां अलग लोगों के लिए कानून और मानवाधिकारों का मतलब अलग है और एक साल उस ढांचे को नहीं बदल सकता।
ऐसा मैम, शहरों के लोग होते हैं पढ़े लिखे और सब नौकर पेशा होते हैं, बहुत जात पात नहीं मानते हैं। यहाँ के लोग होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं और शिक्षित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जातवाद का इसलिए चलता है क्योंकि यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। यहाँ पुलिस कम होती है, यहाँ पर 45 गांव है, 45 गांव में एक चौकी है, वहाँ पर 3 पुलिस वाले रहते हैं, नीचे से ऊपर सब एक ही जात के लोग हैं और यहाँ पुलिस भी उन्हीं की सुनती है जिसकी सरकार होती है, क्योंकि हम लोगों का कोई सत्ता नहीं, नहीं कोई दबाव है, इसलिए हमारा कुछ नहीं होता है।
ये रिपोर्ट थी दिव्या आर्य की और अब जानते हैं आज के अखबार क्या कह रहे हैं। और दिलनवाज पाशा हमारे साथ स्टूडियो में। दिलनवाज, याकूब मेनन की फांसी आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर।
जी बिल्कुल, याकूब मेनन की फांसी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को कल उनके पैतृक रामेश्वरम में सुपुर्द खाक किया गया, ये दोनों खबरें सभी अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है एंड द हैंग्ड याकूब, यानी उन्होंने याकूब को लटका दिया। अलग अलग अखबारों ने इसको, इस खबर को अलग अलग तरीके से लिया है। द भारत टाइम्स की इसी पर सुर्खी है, इस रात की सुबह हुई गुरुवार तड़के तक चली सुनवाई में दलीलें खारिज। आपको हम अपने श्रोताओं को बता दें कल रात भर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और अंततः सुबह याकूब को फांसी दे दी गई। द इंडियन एक्सप्रेस की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 8,000 लोग याकूब मेनन के अंतिम याकूब मेमन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। और अब जिक्र कलाम साहब के अंतिम संस्कार का। अमर उजाला लिखता है भारत माता की जय के नारों के साथ कलाम सुपुर्द खाक। वहीं दैनिक भास्कर का इसी खबर पर शीर्षक है मस्जिद में जनाजे की नमाज, बाहर भारत माता के जयकारे। और कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। उन्होंने और नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे का वहां अभिवादन किया, ये तस्वीर भी अलग अलग अखबारों के पहले पन्ने पर है। एक खबर अब जो बाकी सभी अखबारों में, ये कि दिल्ली में कल दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने एक फर्जी दाखिले कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। करोड़ीमल और कई प्रतिष्ठित कॉलेजों में ये फर्जी दाखिले कराते थे, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, ये खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। और भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच वार्ता आगे हो सकती है, इसकी तैयारियां की जा रही हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने खबर दी है अपने पहले पन्ने पर। दैनिक भास्कर की एक खास रिपोर्ट के मुताबिक देश में हॉलमार्क गहनों भी शुद्ध नहीं है, और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हवाले से उन्होंने ये खबर दी है दैनिक भास्कर अखबार ने।
और एक खबर जो BBC के न्यूज़ रूम में आज मुख्य तौर पर है पब्लिश, वो ये है कि चीन के पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल कुओ पेशियांग का नाम भ्रष्टाचार के एक मामले में आने के बाद उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से निलंबित कर दिया गया है उन्हें। ये खबर BBC के न्यूज़ रूम से आ रही है हमें। और अब चलते हैं एक बार फिर दिलनवाज पाशा के पास मुख्य समाचारों के लिए।
हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते के बाद भारत बांग्लादेश एनक्लेव कहे जाने वाले इलाकों की अदला बदली की जा रही है, इन्हें भारत और बांग्लादेश में शामिल किया जा रहा है। अफगान तालिबान ने अपने नेता मुल्ला उमर की मौत की पुष्टि कर दी है और मुल्ला अख्तर मंसूर को उनका उत्तराधिकारी नेता चुन लिया है। इजरायली पुलिस ने यरूशलम में सालाना होने वाली समलैंगिक अधिकार परेड पर हमला कर 6 लोगों को घायल करने वाले कट्टरपंथी यहूदी को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने ओरेगन के पोर्टलैंड में एक पुल से लटक कर आर्कटिक में खुदाई का विरोध कर रहे 13 पर्यावरण प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। हिंद महासागर के फ्रांसीसी द्वीप रियूनियन आइलैंड के करीब मिले विमान के मलबे के हिस्से को आगे की जांच के लिए फ्रांस ले जाया जाएगा। इसे गायब हुई मलेशियाई उड़ान MH370 से संबंधित माना जा रहा है। चाड की संसद ने चरमपंथ के मामले में फांसी की सजा को फिर से मंजूरी दे दी है। यहां 6 महीने पहले ही फांसी की सजा खत्म की गई थी। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दें अनुमति। स्टूडियो संभाला था अजीत सारथी ने। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी 1 घंटे बाद विश्व भारती में।